अब आ गई है वो आयत जो बड़ी मशहूर आयत है और जिससे लोगों में ये गलत फहमियां हुई कि पता नहीं इस्लाम औरतों को हकूक नहीं देता या इस्लाम में औरतों के ऊपर कितना जुल्म होता है, कितनी उनके ऊपर मार पीट उनकी होती है या क्या होता है। और इसकी वजह से इस आयत को आप देखेंगे बहुत ज्यादा कोट होती है ये आयत, तो इसको आपको समझना जरूरी है क्योंकि इसकी बेस पे इस आयत को लेकर आते हैं, कोट करते हैं और कहते हैं ये देखो जी आपके कुरान में ये है, समझे। और इसी को ये इतनी मशहूर हो चुकी है ना मुसलमान मर्दों में भी बहुत ये मशहूर होती है कि देख लो जी इस्लाम ने तो हमें कहा है कि हम जैसे मारें भी औरतों को और जो भी मर्जी करें, तो देखो जी कुरान कहता है ये। तो आज हम इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला हमें समझने की सीखने की तौफीक अता फरमाए। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, सबसे पहली बात यह कि रिजाल जो हैं, मर्द जो हैं, कव्वाम हैं औरतों पर। कव्वाम मैंने आपको जैसे कि बताया, कव्वाम का माना कायम होने से है, यानी खड़े होना से उसका मुबालगे का सीगा है, यानी मर्द को मुहाफिज बनाया, मुआविन बनाया, हिफाजत निगेबानी करने वाला, जरूरियात का ख्याल रखने वाला, जो पूरी ताकत से खड़ा हो, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कव्वाम बनाया, निगरान बनाया, मुंतजिम बनाया, जैसे किसी भी इदारे का निगरान होता है ना, जो उसको जो उसका सारा इंतजाम संभालने वाला होता है, ठीक है, निगरानी करता है ना। और निगरान से आपको पता है मसूलियत भी होती है, अगर कोई गड़बड़ होती है उस इदारे में, कोई कुछ होता है तो उस मैनेजर को जाके पकड़ा जाता है कि आप थे ना इसके ऊपर निगरान, आपकी हिफाजत में ये दिया गया था ना ये पूरा इदारा, तो आप बताएं आपके ये क्यों हुआ ऐसे, ठीक है। तो मर्द औरतों पे निगरान है, इससे ही बहुत सारी बातें आपको पता चल जाएंगी, समझ आ जाएंगी, ठीक है। जरूरियात का ख्याल रखना भी इसमें आ गया, हिफाजत भी आ गया, निगेबानी भी आ गया, मामलात को चलाना भी आ गया। अब मैंने आपको जैसे मैनेजर का बताया कि इदारे में कुछ गलती होती है, कहीं गड़बड़ होती है तो किससे पूछ होती है, उस आदमी से। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब वो मैनेजर होता है तो इसका मतलब उसके पास कोई इख्तियारात भी तो होंगे ना, ऐसे थोड़ी होगा बस मैनेजर जुबानी बना के उसको बिठा दिया गया, उसके बाद उसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, अब उसने चलाना है सही इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर वो नहीं चलाता तो सवाल है, ठीक है। अब क्यों कव्वाम बनाया गया, मर्द को ही क्यों कव्वाम बनाया गया, ये औरतों का बहुत बड़ा एतराज होता है। उसके दो जवाब यहां पे दिए गए और दोनों बीमा से स्टार्ट होते हैं। नंबर वन बीमा फद्दलल्लाहु, नंबर टू बीमा अनफकु मिन अमवालिहिम, ठीक है। तो ये नंबर वन और नंबर टू लिख लें, क्या वजह है क्यों कव्वाम है। बीमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, बेवजह इसके कि जो फजीलत दी अल्लाह ने फजीलत दी है, उनके खुद ही कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ही फजीलत देने वाला होता है, अल्लाह ने फजीलत दी उनमें से बाज को बाज पर, क्या यानी मर्द को ऐसी खसूसियात दी जो औरतों में नहीं है। अब क्या ऐसी खसूसियात, लो हम तो किसी से कम है भला, हम तो ऐसे हैं जैसे हैं, तो मर्दों में ऐसी क्या खूबियां हो गई। देखें कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जो मर्दों को दी गई क्योंकि उन्होंने चलाना है ना घरों को, उन्होंने निगरानी करनी है घर की, वो घर को कायम रखने वाला, उसके ऊपर जिम्मेदारी है घर की, तो उसको उस हवाले से उसकी अंदर कुछ अल्लाह ताला ने ऐसी खसूसियात दी है, मसलन बहादुरी, कुव्वत। आप देखें एक घर के अंदर चूहा आ जाए तो फिर औरतें कैसे भागती हैं, किसको आगे करती हैं। रात के वक्त अगर कहीं खटपट हो, कहीं से कोई आवाज आए, तो फिर औरत होगी तो वो तो कंबल के अंदर ही दुबक जाएगी, और आदमी होगा तो वो उठ के चल पड़ेगा कि मैं देख के आता हूं क्या है ना। तो बहादुरी, कुव्वत, जुर्रत, मेंटल स्ट्रेंथ है उनके अंदर, इसी तरह उनके अंदर कुछ सख्ती है, शिद्दत होती है, जिसकी वजह से वो मुश्किलात से टकरा जाते हैं, मसाइल से भिड़ जाना। औरत कहती है, औरत के अंदर एक अल्लाह की तरफ से एक नेचुरल ये चीज होती है कि वो घबराती है ऐसी चीजों से, वो चैलेंजेस को नहीं लेना चाहती, उसके अंदर नरमी होती है, वो खतरात से ना भागती है कि खतरे में ना डाला जाए अपने आप को। तो मर्द के अंदर कुछ अल्लाह ने ऐसी चीजें रखी। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, आप हर मर्द को इसमें हर औरत के साथ नहीं कंपेयर कर सकते कि नहीं वो फलाना मर्द तो मैंने देखा तो बड़ा डरपोक क्या, उसके अंदर तो कोई जरूरत नहीं है। हर मत जिन से मर्द की बात हो रही है, यानी अमूमी जब भी बात होगी तो एक अमूमी बात की जाती है, एवरी मैन और एवरी वुमेन को नहीं कंपेयर किया जाता, ठीक है। तो आप इंडिविजुअल्स को निकाल के नहीं पॉइंट आउट कर सकते, आप ओवरऑल पिक्चर को देखें। ओवरऑल ओवरऑल क्या होता है, एक्सेप्शनल केसेस तो देखिए हर जगह ही होते हैं ना, तो ओवरऑल क्या है, आपको दुनिया में क्या नजर आता है। औरतें घर के मामलात को बेहतरीन तौर पे चला सकती हैं, वो मर्दों के काम नहीं होते। किसी के घर में औरत ना हो किसी भी वजह से तो उस घर का निजाम ही उलट पुलट हो जाता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने औरत को घर के अंदर की जिम्मेदारियां दी, मर्द को बाहर के इंतजाम की जिम्मेदारियां दी। अब ये एक गलत फहमी हो गई शायद मर्दों को, या औरतों ने भी ये सोच लिया, या इन आयतों से एक बात निकाल दी कि पता नहीं वो अल्लाह के हाँ बहुत बेस्ट है, कोई ज्यादा उनका मकाम और मर्तबा है। इसमें मकाम और मर्तबे की बात नहीं हो रही कि उनका मकाम बहुत ऊंचा हो गया, अल्लाह ने उनको पता नहीं ऊंचे मकाम और मर्तबे अपने हाँ दे दिए हैं, वो हमारे से कितने ऊपर बेस्ट हो गए हैं, अल्लाह के हाँ उसके बहुत करीब हैं, ऐसा नहीं है। असल में बात यह है कि जिम्मेदारियां दोनों की डिफरेंट हैं, उन्होंने जो मामला संभालने हैं ना उनको उस तरह की क्वालिटीज दी गई हैं। जैसे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी के ऊपर है तो उसको कुव्वत भी दी गई। अब औरतें भी जॉब कर लेती हैं आज, ठीक है, लेकिन उनकी जॉब के बाद क्या हालत होती है, और आदमी सारी जिंदगी करता है और वो कर लेता आराम से। तो ये अल्लाह ताला ने औरत के ऊपर नहीं डाली, फाइनेंशियल माली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली, उसको तो बताया कि तुम्हें तो घर बैठ के खाना है, वो ला के दे तुम्हें, वो खिलाए भी पिलाए भी पहनाए भी, दवा इलाज कोई करना है वो भी वो उसका जिम्मा है, बिल भी वो पे करे, ग्रोसरियां भी वो करे, बच्चों की फीसें भी उसने देनी है, वो खुद सोचे उसने कहां से करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तो कौन फिर सहूलत में है। और रोने देखें औरतों के इतने रोने हैं, इससे भी पता चलता है कि इंसान कोई अकल करे तो उसको समझ आए ना बात के, देखो मुझे तो बिठा के खिलाया गया, बैठ के खाने वाला ज्यादा बेहतर है कि वो जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करे, तरह तरह के लोगों से डील करें, उनकी बातें सुने। बहुत सारी औरतें फिर शेयर करती हैं कि हम जॉब करते हैं तो हमें पता चलता है कि आदमी बेचारे किन किन हालात से गुजरते होंगे। किसी ने शेयर भी किया अपना तजर्बा, उन्होंने कहा उसने सारी जिंदगी नहीं जॉब की थी, तो उसने जॉब की तो उसके बाद वो कहने लगी कि मैंने अपने हस्बैंड का आके शुक्रिया अदा किया कि आपने इतने अरसे मुझे घर बिठा के खिलाया, मैं आराम से बैठी हुई मजे से हर चीज, मेरा काम बस खर्च करना होता था, और आज मैं बाहर निकली हूं तो मुझे पता चल रहा है कि कैसे कैसे लोगों से मुझे कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती हैं, कि कई जगह डांट पड़ती है, कई जगह काम सही नहीं होता तो टेंशन होती है, कभी जब घर इंसान आता है तो तब तक कितने मसले उसके, सारा दिन का थका हारा, क्या उसकी मेंटल कंडीशन होती है, क्या उसकी फिजिकल हालत हो जाती है। तो उसने कहा कि मैंने शुक्रिया अदा किया, यानी सोचें ये इंसान उस वक्त शायद रियलाइज करता है जब वो खुद उस फील्ड में जाता है ये कितना मुश्किल है। तो आदमी ने घर का सिस्टम चलाना है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको अथॉरिटी भी दी कि उसके अंडर ये घर सही से चलना चाहिए, उसने ला के भी देना है, उसने देखना भी है सब चीजें सही चल रही हैं इस घर में। ये तो नहीं कि औरत ही कुछ और कर रही है, वो उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कहां से कहां फिर रही है, वो तो कोई तवज्जो ही नहीं दे रही, उसको देखना है कि सारा उसके नीचे ऑपरेशंस जितने भी हैं वो ऑपरेशन सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बिल्कुल जैसे आप मैनेजर की मिसाल देख लें, ठीक है। तो अब वो ये आदमी की जिम्मेदारी है, अब कितनी बड़ी उसके ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी गई, उससे पूछ होनी है कि ये औरत भी अगर कुछ गलत करती है ना और कुछ गलत जगह पे घूम रही है, कहीं और अलग अलग दोस्तियां कर रही है, तो आदमी से पूछ है तुम्हारे अंडर था ना ये महकमा भी, तुमने क्या किया, जैसे वजीर आजम होता है उसने सारी चीजों को ही देखना, एक है वो एक सिर्फ चीज का वजीर है, एक है उसने पूरे चीजों को देखना है कि एंड टू एंड सारा निजाम सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, इस तरह जज्बाती तौर पे भी आदमी उनमें ठहराव होता है। औरतें इतनी जज्बाती हो जाती है, गुस्सा आ जाए तो तब जज्बात में, ऐसे कोई सिखा पढ़ा दे तो तब भी जज्बात में आके क्या क्या कर लेती। मर्दों के अंदर फिर भी कंपोज्ड रहते हैं, अपने जज्बात को जरा संभालने की उनके अंदर कुव्वत होती है। औरतों के अंदर फौरन फौरन रोने लग जाएंगे, फौरन वो जगह, ये आप देखें कि है एक बात जो कि मानने की तो हम देखते हैं अपने सामने। तो ऐसे में घरेलू जिंदगी में किसी को तो एक होना था ना कवाम, या तो औरत हो जाती या मर्द हो जाता, दो तो नहीं कवाम हो सकते थे। एक घर का एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर होना था। अब अल्लाह ने इन खूबियों की बिना पर जो मर्द के पास है, क्योंकि ये जरूरी है घर का निजाम चलाने के लिए, आदमी को कवाम बनाया। अब औरत कह ले कि मैं तो बहुत बड़ी आलमा हूं, मैं बड़ी फाजला हूं, मैं बड़ी अच्छी बिजनेस वुमन हूं, या मेरे अंदर तो फलां क्वालिटीज हैं, फलां क्वालिटी, तब भी कवाम आदमी ही रहेगा। ठीक है, अच्छा तो पहली आपको बात समझ आ गई, पहली जो वजह है वो क्या बयान हुई है। दूसरी, व बीमा अनफकू मिन अमवाली, और इस वजह से कि वो खर्च करते हैं अपने मालों में से। आप देखें एक आदमी जब कमाता है ना, उस आदमी का कितना खर्चा होता है, एक पैंट शर्ट ले लेगा, एक जूता ले लेगा, बस इसका तो बेचारे का खर्चा इतना होता ही नहीं। आप अपने घरों में जब सारा दिन घूमती है ना, कभी इधर से इधर जाती हैं, घर को ऐसे करती हैं, नीट करती हैं, उधर क्लीन करती हैं, उधर डेकोरेट करती हैं, उधर जाती हैं, तो ये सोचा करें उस वक्त कि आदमी सुबह से निकला हुआ है, उस बेचारे ने तो शाम को आना है, रात को सो जाना, फिर सुबह उठ के फिर चले जाना है। सारा दिन उस घर को कौन एंजॉय करता है, सारा दिन उस घर में कौन ऐश करता है? औरत। वो घर औरत की, यानी उसके उसमें है, उसके दारा इख्तियार में है, ऊपर जाए नीचे जाए इधर जाए उधर जाए, उठाए कोई चीज रखे कोई चीज। उस आदमी ने सिर्फ वीकेंड पे छुट्टी के दिन सारा दिन घर गुजारना होता है, और वो हफ्ते में एक दफा होती है। आप देखें साल भर कौन घर को एंजॉय कर रहा है? तो आदमी ने उसको लेके दिया बन, या तू बैठ उठ खा पी सो या जो भी कर, वो तो चला जाता है। तो वो खर्च करती हैं, घर बनाने में खर्चा होता है, उसके बिल्स हैं, उसकी और चीजें हैं जो मेंटेनेंस है, उस पे खर्च करते हैं, औरतों पे खर्च करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि आदमी की तो सिर्फ इतनी सी जरूरत है, औरतों की तो जहां से लिस्ट शुरू होती है तो फिर खत्म नहीं होती, ना कपड़ों की, ना जेवरों की, ना मेकअप्स की, ना फिर और जो सैर सपाटे और उनकी, तो वो खर्च करते हैं। और देखे खर्च करके, एक बात मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बे से देखी है लोगों के, कि औरत थोड़ा सा भी खर्च करती ना तो कहती है हाय मेरे पैसे, मैंने अपने पैसों से किया। अच्छा, मर्द खर्च करता रहता है घर पे, वो नहीं कहता मेरे पैसे। अमूमी बात कर रही हूँ, अब कोई ऐसे होंगे जो कोई एक्सेप्शनली केसेस, उन जिनकी अकल फिरी हुई हो तो उनको तो कुछ नहीं कह सकते, मगर आप ओवरऑल देखें मर्दों के अंदर नहीं ये होता। औरतें ज्यादा कहती हैं कि वो थोड़ा भी कमा के लाएंगी ना तो उनको होता है मेरे पैसे क्यों खर्च हो जाए। आदमी खर्च करता है घर पे, तो ये एक दूसरी वजह है कि अल्लाह ताला ने उसको कवाम बनाया, ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल दी। और ये उसका कोई वो नहीं है कि वो कोई एहसान कर रहा है, मगर अल्लाह ताला ने उसके ऊपर डाली है कि उसको ये करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। औरत को अल्लाह ने कयामत के दिन नहीं पूछना कि तूने कमाई क्यों नहीं की थी, हाँ उससे उसके घर के बारे में पूछना है, उसकी रैयत उसका घर है। और मर्द को पूछा जाएगा कि वो उसने अपने घर वालों के फाइनेंस का ख्याल रखा, या वो उनको दर्द दर्द की ठोकरें खाने पे छोड़ दिया कि वो लोगों से मांगते फिरे। ये आदमी की जिम्मेदारी है, वो लाए खिलाए पहनाए प्रोवाइड करे, ये उसकी जिम्मेदारी है, अल्लाह ने उसके ऊपर डाली है। अच्छा, अब ये हो गया आदमी का, अब औरतों का क्या है? औरतें कौन सी, उनकी क्या क्या उनके ऊपर क्या है जिम्मेदारी? आदमियों को समझ आ गई ना, और इस वजह से अल्लाह ने कवाम बनाया। ठीक है, अब ये चीजों को अगर हम समझ जाए ना एक दफा, तो ये जो बहुत सारे झगड़े मसाइल होते हैं ना, ये खत्म हो जाए। फसौलेहा, तो नेक औरतें पता है कौन सी हैं? नेक औरतों की को डिफाइन किया गया, हमने भी नेक बनना है ना, तो नेक बीबियां कौन सी हैं, नेक औरतें कौन सी हैं। अब ये यहाँ पे ये नहीं आया कि भाई वो जो नमाजें बड़ी पढ़ती हैं, तहज्जुदें बड़ी पढ़ती हैं, रोजे बड़ी रखती हैं, ये करती हैं वो करती हैं। यहाँ पे एक और तरह से घर की वो अलग नेकी है, मगर एक नेक औरत यहां से पहचानी जाती है कि वो कानितात है। कानितात में दो चीजें आती हैं, एक फर्मा बरदारी में दवाम, ठीक है, यानी हमेशा फर्मा बरदारी करनी है। ऐसे नहीं है कि कोई जिन मूड अच्छा हो गया तो आदमी आके मान ली, मूड खराब है तो अब सारा उल्टा सीधा करके रख दिया। खास मौके पे किसी दिन सूरज मगरिब से निकल आया तो फिर अच्छा मूड जरा है तो बेगम साहबा हाँ में हाँ मिलाने लगी, वरना हमेशा उनका मूड ही बना रहे, ये नहीं। एक तो उनके अंदर दवाम है, आजी में सॉरी फरमा बरदारी में, दूसरी उनके अंदर क्या है कि वो आजी रखती हैं, उनके अंदर आजी है, इनके सारी है, वो समझती हैं कि आदमी का रोल क्या है, ठीक है, और इस वजह से वो आजी से रहने वाली हैं, ठीक है ना। तो आजी भी नेक औरत की एक क्वालिटी है, फरमा बरदारी की, कहना सुने आदमी का। अब मैंने आपको बताया वो बेचारा क्या क्या सारा दिन खपता है, किस तरह घर आता है, फिर आगे एक अड़ियल औरत हो, जिद्दी औरत हो, उसका मूड ही बना रहता है, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, मैं तो ये फिर क्या है। तो ये दो क्वालिटीज होनी चाहिए। अब आप इसमें अपने मुआशरे को जरा सिर्फ प्लीज देखें, हम बेटियों को क्या सिखाते हैं, हम बहनों की शादियां होने लगे तो क्या कहते हैं, हमेशा ये सिखा के भेजते हैं घर वाले, लड़की के घर वाले इसको ऐसा देते हैं, तुमने जाके दब नहीं जाना, तुमने नीचे नहीं लग जाना, देखो पहले दिन से नीचे लग गई ना तो नीचे ही लगी रहोगी, ये कहते हैं। ये कनूत का सबक है, आजी का सबक है, या नुशूज का सबक है। आगे पहली क्वालिटी कौन इतात की थी, ठीक है, इतात गुजार, अल्लाह की इतात गुजार होगी, शौहर की भी होगी, फिर शौहर मैनेजर है, वो ओनर नहीं है, अल्लाह ओनर है हमारा, तो ये नहीं करना कि हमें इतात गुजारी पता है कब आती है, जिस वक्त जहां पे अल्लाह का कोई हुक्म तोड़ना हो तो कह रहे थे फौरन, देखें अल्लाह का तो ये हुक्म है, ठीक है आप बता रही हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड तो इस तरह नहीं पसंद करते, तो हस्बैंड को खुदा भी नहीं बना लेना, ठीक है, ये भी जहन में रहे, और ना ही ये कहना है कि जे मैंने तो शौहर को जूती बना के रखना है, ये भी दोनों के अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए। आदमी को भी अल्लाह ताला ने कवाम बनाया, ये नहीं कहा कि तुम जो है तो औरत तुम्हारी जूती है पैर की, जो कि हमारे यहाँ ये इस तरह के मुहावरे मशहूर हैं, कवाम बनाया और वो इन बातों की वजह से बनाया, तो तुम ऐसा करके दिखाओ, तुम ऐसे बन के दिखाओ, तुम्हारी ये जिम्मेदारियां बता दी गई, तुमने खर्च भी करना है, और तुम्हारे तुम्हारे अंदर जो अल्लाह ताला ने ये क्वालिटीज दी हैं इसकी बेसिस पे तुमने औरत की हिफाजत करनी है, उसकी इज्जत की, उसके माल की, उसकी जान की मुहाफिज हो तुम, तो मैं ऐसे नहीं है कि उसकी इज्जत की कोई हिफाजत की कोई परवाह नहीं है, बल्कि उसको साथ लेके जा रहे हैं, जाओ तुम मेरे बॉस से तुम मिलो और उससे बात करो, हो सकता है कि वो मेरी प्रमोशन करा दे, औरत कोई बना संवार के लेके जा रहे हो साथ, ये नहीं है, उसकी निगहबानी, उसकी हिफाजत, उसके माल की भी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी, उसके पास कोई माल है ना उसकी भी हिफाजत करनी है, उसकी इज्जत की भी हिफाजत करनी है, ये नहीं कि उसकी इज्जत को खुद ही उछालते फिरे इधर उधर, उसकी बातें बनाते फिरे। मर्दों में बैठ के जब कोई मर्द बीवियों की बुराइयां करते हैं तो सबको समझ आ जाती है कि अपनी बीवी से कितना खुश है ना, तो उनकी इज्जतें उछालना महफिलों में बैठ के ये सही नहीं है चीज, तो वो तो क्या है, अल्लाह ने उनको बास क्वालिटीज दी हैं बास पे, और उनके अंदर ये भी क्वालिटी है तहम्मुल, और ये चीज का कि उन्होंने घर को उनके निजाम को कंट्रोल में रखना है, उसको मैनेज करना है, उसको तबाह बर्बाद नहीं करना। अब औरतों की दूसरी क्वालिटी क्या है, पहली तो आपको समझ आ गई, दूसरी है हाफिजातुल्लिलगैब, हाफिजातुल्लिलगैब को पहले समझते हैं, हिफाजत करने वाली गैब में, यानी जब शौहर नहीं है मौजूद तो उसके घर की हिफाजत करना, और सबसे पहले घर की भी छोड़े, सबसे पहले चीज जिसकी उन्होंने हिफाजत करनी है वो है अपनी इज्जत। कि शौहर घर पे नहीं है तो अपनी इज्जत की हिफाजत करे, ऐसी छुपी दोस्तियां ना लगाए, कहीं किसी के साथ बातें कर रही है, कहीं किसी के साथ मेल मिलाप शुरू हो गए, अब शौहर तो तवज्जो देता नहीं, हम क्या करेंगे, वो तो मुझे टाइम नहीं देता। तो वो फलां है ना, उसके साथ बड़ा मजा आता है, वो मेरे साथ बड़ी बात करता है, वो बड़ी मेरी तारीफें करता है, मेरे हस्बैंड तो कभी मेरी तारीफ ही नहीं की। नहीं, ये नहीं चीज हो सकती, नहीं मैं कुछ गलत तो नहीं करती, मैं तो बस उसके साथ चैटिंग ही करती हूँ ना। हिफाजत करें अपनी इज्जत की सबसे पहले, दोस्तियां नहीं लगा सकते, किसी के साथ ताल्लुकात नहीं रख सकते, बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते, हिफाजत करने वालियां होती हैं वो, क्योंकि अब उसकी इज्जत उसके शौहर की इज्जत है और शौहर की इज्जत उसकी इज्जत है। इसी वजह से राज नहीं देती किसी को, कि मैके जाके ससुराल के सारे राज उधर बोल रही हैं और उधर बता रही हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर मैके वाले भी उनकी नजर में भी कोई इज्जत नहीं रहती इसके शौहर की ना उसके ससुराल की, तो अपना ही खराब कर रही होती ना घर। तो हाफिजात ले लो भाई, और शौहर नहीं है तो अब फोन पकड़ा माँ को सारी बातें बता रहे, वो तो नहीं है ना, उसकी गैर मौजूदगी में उसके राज फाश कर दिए, वो तो हिफाजत करने वाली होती, हाफिजात है, राज की भी हिफाजत करती है, अब मामलात की हिफाजत करती है, अपनी अमिया बीवी के जो आपस के ताल्लुकात हैं उनको सहेलियों को नहीं बताती करती, आज उसने ऐसे कहा, उसने वो करा, और उसके बाद फिर आप देखें कई हासिद भी इसीलिए फिर पैदा हो जाते हैं, कई बहुत उनकी बातें घर घर में एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाती है, और ऐसी औरतें ये नहीं सोचती कि वो अपने अपनी इज्जत भी खराब कर रही हैं और अपने पूरे खानदान की इज्जत खराब कर रही हैं। हाँ, कोई बहुत ही बात हद से बढ़ जाए तो जाहिर है फिर तो किसी को इन्वॉल्व करना है, वो आगे बात आएगी, लेकिन ऐसे नहीं कि बस गपशप में ही सारे राज बता दिए। अच्छा, फिर आप देखें और क्या चीज होती है जिसकी उनको हिफाजत करनी है, उसके घर की भी मुहाफिज है, वो गया था उसको तो पीछे नहीं पता एक घर में क्या होने लगा, वो चीजें तोड़ रही है, फेंक रही है, लाइटें खुली हुई हैं, पानी चल रहे हैं, चीजें खराब हो रही हैं, उनकी हालत बुरी हो रही है, उसको परवाह ही नहीं, वो घर की भी हिफाजत करने वाली, उसके बच्चों की भी हिफाजत करने वाली, ये रायत है उसकी, नौकर चौकर है घर के, वो भी उसके अंडर है इस वक्त, वो तो आदमी तो गायब है, तो ये अब पीछे से ये औरत ही है ना जो निगरान है, यानी आदमी की गैर मौजूदगी में औरत है जिसके ऊपर सारा घर है, अब वो इस घर को कैसे टेक केयर उसकी करती है, कैसे वो इसकी हिफाजत करती है, ये सारी औरत से पूछ है अल्लाह के हाँ, एज बीवी उसकी ये जिम्मेदारी है, इस घर के अंदर जितने अफराद हैं वो भी अब उसकी जिम्मेदारी है, चाहे अब वो कोई सास है, चाहे अब वो कोई नंद है जो अनमेरिड है, चाहे वो कोई है, अब वो उसके साथ रहते हैं, अब एक घर के अंदर रह रही है, इसकी जिम्मेदारी है, वो अब इनकी भी जो भी इनकी देखभाल है या जो उनके साथ की जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करें उनको। तो ये हाफिजात में आके हिफाजत करने वाली है उसके घर की, उसके माल की, उसके बच्चों की, उसके उसके राजों की, अपनी इज्जत की, ये सब है हिफाजत में आती चीजें। अब वो इसको घर छोड़ के गया ना, अपना घर इसके हवाले करके गया ना, ये हम कहते हैं ना घर वाली, बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड है, घर वाली, घर वाली औरत ही होती है, घर वाला तो नहीं किसी को कहते हम, आदमी को तो नहीं घर वाला कहा जाता, हम कहते हैं घर वाली, अब जब मर्द भी कोई बात करते हैं बीवी के तो वो क्या कहते हैं, मेरी घर वाली, वो घर वाकई उसके सुपुर्दी होता है सारा, किसने उसको देखना है, चलाना है, करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके अंदर क्या लाना है, क्या चीज की जरूरत है, क्या चीज खत्म हो रही है, ये सारी चीजें उसने देखनी है, कोई लीक हो रही है चीज, कोई और कोई चीज की खराबी हो रही है, ये उसकी जिम्मेदारी कि वो इन चीजों को टेक केयर करे, ठीक है, अमूरे खानदारी सारे इसके अंदर आ गए। और इज्जत की बात को तो आपने समझ लिया ना अच्छी तरह, बीमा हाफिज अल्लाह, साथ उसके जो हिफाजत की अल्लाह ने, यानी क्या मतलब इसका, अल्लाह की मदद के साथ वो ऐसा करेगी, दूसरा माना क्या है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, ठीक है, अल्लाह ने हुक्म दिया है तो इसकी हुक्म के मुताबिक, अल्लाह पहला मतलब क्या, अल्लाह की हिफाजत से निगेबानी करने वाली है, उसकी मदद से निगेबानी करने वाली है, वो घर की हिफाजत करने वाली है। और दूसरा माना अल्लाह ने हुक्म दे दिया उसको तो तब करती है। तीसरा माना अल्लाह की हिफाजत में औरत अपनी हिफाजत करेगी, यानी वैसे तो हिफाजत करने वाला अल्लाह ही है ना, हम तो नहीं कह सकते हमको हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ही औरत पे जिम्मेदारी डाली है। अब इसके अंदर वो ये भी आ जाती है सारी कि भाई जब औरत की जिम्मेदारी घर है तो मर्द को सुकून का माहौल घर में दिया जाए, जब वो घर आए तो आप घर की निगेबान वो है, ऐसा माहौल बनाए कि उसको सुकून मिले यहाँ पे। हाँ तो अब ये औरत, नेक औरत कौन सी है जो ये करेगी सब। अब आगे आता है जहां पे मसला बहुत ऑब्जेक्शन खड़ी होती है, वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना। पहले तो बात को हम समझें कि किन औरतों की बात हो रही है जिनका तुम डरते हो। नुशूज, नुशूज कहते हैं खड़े हो जाने को, फन शूज हुआ है ना सूरह मुजादला में, कि जब तुम्हें कहा जाए कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाए करो। तो नुशूज क्या है असल में, कहते हैं ये उस सवारी को जो अपनी पीठ पे सवार को बैठने ना दे। अब देखते हैं ना कई दफा कोई घोड़े ऐसे होते हैं उनके ऊपर कोई बैठने लगता है, उठा उठा के उसको मारते हैं, इस तरह करते हैं, काबू में ही नहीं आते, पटक के रख देते हैं सवार को। तो कई औरतें भी इसी तरह की होती हैं, वो आदमी को भी लताड़ के रख देती, वो किसी के काबू में आने वाली ही चीजें, वो तो खुद बहुत बड़ी चीज खुद को समझती हैं। तो नशा कहते हैं खड़े हो जाना, इससे ही आपको पता चलेगा कि कैसी औरत, यानी जो बगावत पे उतर आए, जिन्होंने बात समझनी नहीं, बागी हो गई। अब किसी सेंस में भी ले लें, ये बगावत ये नहीं होती कि आदमी ने कहा कि मेरा जरा मुझे पानी का ग्लास देना, तो औरत ने कहा मैंने नहीं देना, तो अब ये बगावत हो गई, तो अब ये सारे स्टेप्स शुरू हो जाएंगे, ये नहीं है बगावत। बगावत अपनी इज्जत के मामले में भी हो सकती है, आदमी कहे कि भाई फलान से नहीं मिलना तुमने, फलान मैं उसको नहीं पसंद करता, तो वो कहे नहीं जी मैं तो मिलूंगी, मैं आप कौन होते मुझे मना करने वाले, मैं तो वो अड़ जाए इसके ऊपर। नुशूज चढ़ाई को भी कहते हैं कि औरत मर्द के खिलाफ मुहाजराई शुरू कर दे, उसके खिलाफ उसके आगे खड़ी हो जाए, अब बात मान के ही नहीं दे रही। अब कहा गया कि वो तो कानितात होती हैं, ये नुशूज करने वाली है, सरकश हो जाना, निभाई नहीं करना, आदमी को बुरा समझना, नीचा समझना, उसकी बदखोइयां करना, यानी उसके मुकाबले में खड़ी हो गई है ना, जो वो मुकाबले में जितनी चीजें आ जाती हैं वो सारी इसमें है। या ये भी उलमा ने कहा है कि इसमें ये भी आता है कि मर्द को हकूके जौजियत ही ना देना कि मेरी मर्जी है, जैसे आज वो कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, शादीशुदा है तो कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जब आपने निकाह किया था तो उस वक्त आपने किस चीज पर साइन किए थे, निकाह के अंदर ये मौजूद है कि आप आदमी को यह हक देते हैं अपने जिस्म का, वो अलग बात है कोई औरत बीमार है या कोई, तो आदमी को भी कंसिडर करना चाहिए, लेकिन आप ये कोई कहे कि नहीं जी मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये तो मर्जियां की अब बात ही नहीं रह गई, ये नुशूज है फिर, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली जो बात है ना, ये है नुशूज। तो जिनसे तुम डरते हो नुशूज से, अब ऐसी औरतों के लिए पहला स्टेप जो आदमी लेगा वो ये नहीं है तलाक 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 चली जाओ घर से, धक्के मारे वो निकाल के रख दिया। कई औरतें रोती हैं और कहती हैं देखो हमारी क्या हक है, हमारा इस्लाम ने तो क्या हमें हक दिया है, आदमी 3 बोल बोलता है और हमें घर से बाहर खड़ा कर देता है। हालांकि ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं, नुशूज कर रही है औरत, और फिर भी क्या कहा गया, फायदू हुन्ना, उनको नसीहत करो, समझाओ बुझाओ, देखो इस तरह से नहीं है, देखो हदीसें सुनाएं, कुरान सुनाएं, उनको तलकीन करें, उनको कोई लेक्चर दें, उनको किसी के लेक्चर में ले जाएं, वहां पे बिठाएं, कहीं कुछ मतलब ऐसी नसीहत की बातें उनको करें, वाज वो नसीहत होती है जिसमें दिल को नरम किया जाए। अब ये गालियां देना वाज नहीं होता, ताने मारना वाज नहीं होता, वाज हमेशा याद रखें वाज में होता है खुदा का खौफ दिलाना और प्यार मोहब्बत से होता है वाज, शफ़क़त के बर्ताव के साथ वाज होता है, जिसमें दिल नरम हो जाए। आपको अगर थप्पड़े मारने से थोड़ी दिल नरम हो जाता है। अपने हकूक का एहसास दिलाए, कुछ करे, कुछ कोई बात बोले उसको, ताकि इसका नुशूज खत्म हो जाए, कि तुम कुछ समझ करो। देखिए ना, याद रखें, खानदानी निजाम ना ऐसे ही नहीं चलता, उसमें ना दोनों को बड़े सोच समझ के चलना पड़ता है। मर्द की जिम्मेदारियां, औरत की अपनी जिम्मेदारियां। अब शादी का मतलब ये नहीं होता कि औरत अपने आप को बिल्कुल खत्म करके मर्द के अंदर बिल्कुल ऐसे हो जाए कि कुछ है ही नहीं उसकी, और वो बेचारी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। नहीं, मगर ये एक यूनिट है जिसको चलाने के लिए दोनों के अंदर बाहम हमदर्दी के जज्बात होने चाहिए। एक फरीक भी ये ना सोचे, नाराज होता है तो होता, फिर मुझे क्या, मेरी जाने बला, खुद ही ठीक हो जाएगी। ना मर्द ये सोचे, ना औरत ये सोचे, जाए तो जाए, भाड़ में जाए, मुझे क्या। ये नहीं कर सकते आप, बेपरवाह नहीं हो सकते। आपको केयरिंग होना पड़ता है इस रिलेशनशिप में। किसी दिन कोई मनाए, एक मना ले, दूसरे दिन दूसरा मना ले। इस तरह गिव एंड टेक से जिंदगियां चलती हैं। और एक अकड़ जाए, नहीं तो मैं तो बस बात ही नहीं माननी, मैंने तो कुछ करना ही नहीं, मुझे क्या, जो मर्जी करें, जो मर्जी कहता रहे, मैंने नहीं इसकी बात सुननी। हाँ, नाजायज कोई बात कर रहा है, अलग बात है, मगर ऐसे करके अकड़ जाना ये दुरुस्त रवैया नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या बताया, फरमाया खुतबा हज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमियों से अल्लाह ताला से डरते रहा करो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, वो तुम्हारी खिदमत गुजार हैं, मातहत हैं, यानी तुम्हारे अंडर हैं। अब देखिए ना, एक औरत की शादी हो गई, अब वो तो बंद गई एक आदमी के साथ ना, उसके अंडर हो गई, अब वो तो नहीं जाके कहीं ना शादी कर सकती है ना कहीं, है ना, वो कोई आजाद है, वो तो इसके नाम के साथ बंद गई है, इसके घर की हो गई, उसने अपना घर छोड़ दिया इसके लिए। तुम्हारा हक इन पर यह है कि जिसके आने जाने से तुम खफा हो उसको ना आने दे, ठीक है। यानी आदमी का यह हक क्या है कि अगर वो किसी को नहीं पसंद करता कि मेरे घर में आए जाए, तो वो औरत उसको ना आने दे। अच्छा, अब ये बात फिर नुशूज में आ जाती है कि वो कहे कि मैं नहीं ये बात समझूंगी, मैं ना मानू, चाहे जो मर्जी करे। तो उनको वाज करो, समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही, बहुत अहम आयत है, इसको समझना बहुत जरूरी है, आप औरतों के लिए भी, आदमियों के लिए भी। वाज करो, आदमी वाज नहीं करते, उधर चुटिया पकड़ी, उधर घर से बाहर, तलाक तलाक तलाक, उसके बाद कहते हैं हाय अब कैसे होगा, अब तलाक एक हुई है कि तीन हुई है, अब क्या हो गया, उस वक्त मैंने गुस्से में दे दी उस वक्त। वो तुम्हें तो अल्लाह ने बाज को बाज में जो फजीलत दी है, उनमें ये भी है कि ये नहीं कि औरत को क्यों नहीं ये दे दिया गया तलाक का हक, वो 3 दफा तलाक कहके वो भी फारिग हो जाती, अपने आप को कर लेती। लेकिन अल्लाह को पता है वो जज्बाती है, अगर आदमियों ने भी वही काम करने हैं जज्बाती वाले, तो फिर उसमें और उसमें क्या फर्क रह गया। तो नहीं, तुमसे हिकमत, तहम्मुल, तदब्बुर, इस चीज को एक्सपेक्ट किया जाता है। अब वो नुशूज कर रही है, अब आदमी अगर गुस्से वाला है वो तो उठा के फेंकेगा। कहा गया नहीं, तुमने वाज करना, इसके लिए तहमुल चाहिए कि नहीं चाहिए, बर्दाश्त चाहिए ना। वो ये करने लगी भी, अकड़ने लगी भी है, ऐसे महाजराई कर रही, उसको वो वाज करे। अच्छा, वाज करता रहे, अगर वो इससे नहीं फिर भी समझ उसको आती, इतनी अड़ियल औरत है, होती है ना बाज उजड़ किस्म की होती है, बस नहीं ही मानना मैंने, वह जुर्मना फिर मदौजी, तो क्या करो, छोड़ दो उनको उनके बिस्तरों में। अब इसके बारे में भी कहा गया कि ये मतलब है कि आदमी रहे तो वहीं, अपना बिस्तर वहीं भी, बिस्तर पे सो, उसी बिस्तर पे सोए, लेकिन उसके साथ कलाम ना करे, अपनी करवट बदल के लेट जाए, ना उसे बातचीत करे, ना उसको, उसके साथ उसका हक्के जोजियत ना दे। ये औरत के लिए बड़ा ही ये भी उसके लिए एक सजा होती है, क्योंकि आदमी उसको लिफ्ट नहीं करा रहा, जिसको कहें लिफ्ट नहीं करा रहा। और औरत तो खुश इस पे होती ना कि आदमी उसके पीछे पीछे फिरे, उसको इससे कुछ चाहत है। तो अब वो अपने ताल्लुकात, जिनसी ताल्लुकात इसे बिल्कुल कट कर देता है, घर से अभी भी नहीं निकालना। मैं नहीं, अब तुम ये नहीं, तुम मानी, मैंने तुम्हें इतना समझाया, चलो निकल जाओ, नहीं, ताल्लुकात खत्म कर दिए, अपने दूसरी जगह जाके सो गया, या उसी जगह सो रहा है, और ये कट ऑफ कर दिया। अच्छा, अगर फिर औरत ऐसी है कि फिर भी उसको नहीं समझ आती, लेकिन ये वाजुरु उन्ना वाली एक बात, एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, वाजुरु उन्ना का मतलब ये नहीं कि अब आदमी ने बिस्तर बदला है या करवट बदल के लेट गया तो अब ये चलता ही रहेगा और साल हर साल इसी तरह चल रहा है कि वो दूसरे कमरे में सोता है, उधर सोती, क्योंकि उसको किसी बात पे नाराज की। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये भी फिर जुल्म होगा आदमी की तरफ से, क्योंकि बाज घरों के अंदर ऐसा ही चलता है कि अरसे अरसे तक साल हर साल हो गए आपस में ताल्लुकात ही खत्म है, ना बोलते हैं ना चलते हैं ना कुछ है, कोई नाराजगी आपस में और बस इसी तरह चलता जा रहा है। नहीं, मुफस्सरीन कहते हैं 1 महीने तक इसकी इजाजत है, बाज ने कहा मैक्सिमम मैक्सिमम 4 महीने तक इसकी इजाजत, 4 महीने के बाद वो औरत के साथ आए और उससे ताल्लुक कायम करे, 4 महीने से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, अच्छा अब ये भी नहीं चला, अब ये भी हरबा नापाम हो गया और अब क्या किया जाए। तो अब यहां पे जाके आता है वद्रिबूहुन, तो आप मार सकते हैं उनको, लेकिन कौन सी मार मार सकते हैं, कैसी मार मार सकते हैं, क्या उसका बाजू तोड़ दें, उसके सर के बाल खींचे हैं, उसको पीटें, कई औरतें शिकायत लेकर आती हैं और कहती हैं कि इतना हमें मारा है और मतलब ऐसा मारा है कि उन्होंने, फिर जाहिर है फिर निशान भी पड़े मुंह पे, लोगों ने भी देखा, लोगों को भी पता चला, फिर वो बेचारियां अपनी छुपाती हैं और बहाने करती हैं कि किसी और ने कहीं और गिर गई थी, ये हो गया था, हो गया था। फरमाया नहीं, मारने का मतलब ये नहीं है कि अब उसको थप्पड़े और ऐसे मारना शुरू कर दो, मारने का मतलब जो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो मुफस्सिर कुरान है उन्होंने क्या बताया कि मारने का मतलब क्या है। मारना कोई सजा के तौर पे नहीं मारा जा रहा, बल्कि आप इस बात को इस तरह से समझें कि यानी उसको शर्म दिलाने के लिए कि देखो तुम ये क्या कर रही हो, अकल करो। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि ये मार कैसी है, जैसे मिसवाक से कोई इंसान अपनी बीवी की पिटाई करे। मिसवाक अब क्या होती, समझ लीजिए जैसे आप टूथब्रश पकड़ लें, ऐसे जैसे ऐसे करके उसको मारा कि यानी एक बड़े के लिए, एक एडल्ट के लिए इतना ही काफी होता है ना कि कोई उसको इस तरह से करके करे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बेइज्जती फील होगी। ये है बद्रीपूहन, और मुस्लिम की हदीस भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हज्जतुल विदा में फरमाया लोगों औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, तुमने उनको अल्लाह की अमान में हासिल किया है और अल्लाह की इजाजत से उनके जिस्मों को अपने ऊपर हलाल किया। अब निकाह क्या होता है, अल्लाह का नाम लेके एक औरत ने अपना आप सपुर्द कर दिया आदमी के, तुम्हारा उन पर यह हक है कि वो तुम्हारे बिस्तरों पर उसको ना आने दे जिसको तुम ना पसंद करते हो, अगर वो ऐसा करें तो उनको इस तरह मारो कि चोट का निशान ना पड़े, यानी ऐसी तक ऐसे नहीं मारना कि नील पड़ गए हैं कहीं सर में, कहीं बॉयल्स हो गए हैं, कोई कुछ हो गया है या बाजू तोड़ दी है, और उनका तुम पर यह हक है कि तुम उनको जो मारूफ तरीका है उसके मुताबिक खिलाओ पिलाओ पहनाओ। ये है, तो ये नहीं है कि जो आज इस चीज का मतलब समझ लिया गया है कि बस जो मर्जी करते रहे हम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की बंदियों को मारा ना करो, फिर हजरत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि औरतें अपने खामदों के साथ इतनी बदतमीजी करती हैं, इतनी बदजुबानी करती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इजाजत दे दी कि ठीक है तुम हाथ उठा सकते हो। फिर बहुत सारी औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर आ गई खामदों की कि ये तो हमें मारने शुरू हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब ये शिकायत सुनी तो फरमाया कि ये लोग जो ऐसे करते हैं ना, ये तुम्हारे अच्छे लोगों में से नहीं है, ये तुम्हारे अच्छे लोगों में से नहीं है, ये फरमाया, यानी इस चीज को डिस्करेज किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में औरत तो छोड़े किसी नौकर तक को, गुलाम तक के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि कोई अपनी बीवी को इस तरह से ना मारे जैसे कोई अपने नौकर को, गुलाम को मारता है, फिर दिन गुजरने के बाद उसी से जमा करे कि उसके बाद फिर रात को जाके उसी के पहलू में लेट जाता है, फिर उसी से ताल्लुक कायम करता है और सारा दिन उसको ये मार पिटाई उसकी शुरू की हुई, अजियतें उसको दे रहा है। तो इसीलिए मुफस्सरीन कहते हैं कि अगर बीवी की कोई अजियत है तो उसको बर्दाश्त करना और उस पर सबर करना उसको उसको मारने से अफजल है, इल्ला ये कि कोई नाकाबिले बर्दाश्त ही ऐसा मामला हो जाए तो तब इतनी तक इजाजत है। अब इसके बाद मुझे बताएं यहाँ पे क्या हो रहा है इन मुल्कों में जिनको तरक्की याफ्ता सिविलाइज्ड पढ़े लिखे लोगों के मुल्क कहा जाता है, यहाँ पे आप डोमेस्टिक वायलेंस के, ये जरा स्टैटिस्टिक्स आप जरा गूगल कीजिएगा, आप देखिए जरा कि क्या स्टैटिस्टिक्स है, कितनी औरतों को मारे पड़ती हैं और हत्ता कि वो जहनी मरीज बन जाती हैं। उनको ऐसे होता है कि हम इसी काबिल हैं कि हम मार खाएं, तो ये हमें सही मारता है, अब मारा करें हमें। उनकी इज्जत नफ्स खत्म हो जाती है, वो खुद कोई कहीं कॉल नहीं करती हैं, किसी को बताती नहीं है, और मारे सारी जिंदगी खाती रहती हैं। इस्लाम थोड़ी ये कहता है। और इस आयत को पॉइंट बना के ये करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी अहादीस को एक तरफ डाल देना और बस कहना ये देखो कुरान में तो ये लिखा हुआ है, ये कुरान पाक के अहकामात का अल्लाह की बात का मजाक बना लेना। डरना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मर्दों को हज्जतुल विदा में फरमाया है कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, फरमाया क्या कि औरत पसली से पैदा हो। अब इस बात आप चीज को भी ना आदमी बहुत मजाक बनाते हैं कि देखा तू पसली से टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसको सीधी करने की कोशिश करोगे सीधी नहीं, कि यानी अल्लाह ने जैसे इसकी साख्त बनाई है, जब इस चीज के ऊपर मजाक करते हैं तो फिर अब उसके बाद उस चीज को बर्दाश्त भी करना चाहिए कि अब हम छोटी मोटी बातों के ऊपर इतना बड़ा इशू ना बना ले कि उसके ऊपर कहें कि हम अब इसको मारने का कोई बहाना तो मिले हमें। देखो तो कुरान ने तो कहा ना मार सकते हैं, तो फिर मिसवाक से आप भी पकड़ के मारे, लेकिन पहले ये स्टेजेस किए हैं, फाइज उन्ना वाहजुर उन्ना, और क्या वो नुशूज करती थी या छोटी छोटी बातों को इशू बना लिया जाए। पर फरमाया इन अतानकुम, फिर अगर वो इताअत करें तुम्हारी, फला तबगू अलैहिन्ना सबीला, अब अगर वो मान गई हैं, अब उन्होंने अपना नुशूज छोड़ दिया है, चाहे फर्स्ट स्टेज पे छोड़ दिया, चाहे सेकंड पे, चाहे थर्ड पे आके उनको बात समझ आ गई, तो अब वो तुम्हारी इताअत कर रही है, बात मान रही है, तो तुम मत तलाश करो बहाने के, अब मैं किस तरह कोई ऐसा मेरे हाथ कोई इशू आ जाए कि मैं उसको बुनियाद बना के और इसको जरा लगाऊं, इसको जरा अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह माफ करे, क्योंकि मेरे पास तो इतने मसाइल आते रहते ना औरतों के, अल्लाह ताला हमें माफ करे। कि एक बहन ने कहा कि वो उनके हस्बैंड कहते हैं कि मेरे हाथों को खुजली होने लगती है, मुझे कुछ ना कुछ तुम्हें मारना है तो फिर ही मुझे चैन आएगा। तो ऐसे आदमी मेंटली सिक होते हैं, वो अपनी बीमारी, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली सही नहीं होते ना, तो वो इस वजह से मारपीट करते हैं। वो ये नहीं होता कि वो औरतों का कसूर होता है, तो लेकिन उनकी उनके साथ कुछ ना कुछ बचपन में कुछ ऐसा वायलेंस हुआ होता है, या कोई ऐसे हादसा या कुछ ऐसी चीज होती है उनकी जिंदगी में जिसकी वजह से वो ऐसी एबनॉर्मल हरकत करते हैं। वरना कोई नॉर्मल आदमी, ये नॉर्मल लोगों की बात हो रही है, एबनॉर्मल लोगों की बात नहीं हो रही। तो कोई इस आयत को बुनियाद बनाकर अपने आप ये फ्री हैंड ना समझे कि मैं जितना मर्जी मारूं, मुझे तो अल्लाह ने इजाजत दे दी है। तो मैंने आपको सही से बता दिया कि अल्लाह ताला ने क्या बात फरमाई है, किस तरह से अल्लाह ताला ने बताया। आप सोचिए एक औरत आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उसने कहा कि मेरे पास दो रिश्ते आए हैं, गालिबन फातिमा बिनत कैस थी मेरे ख्याल में, तो दोनों में से मैं किसके साथ शादी करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक का तो बताया कि उनका क्या मसला था, दूसरे के बारे में फरमाया वो बड़ा सख्त आदमी, हर वक्त तो उसने लठ कंधे पे ही रखी होती है, यानी वो सख्ती करने वाला है, तो उसके साथ ना करो तुम, हजरत जैद के साथ फरमाया था उनके साथ कर लो। तो ये इससे पता चलता है कि हर वक्त घर के अंदर एक फिरौन या जिल्लाद बने फिरते रहना, ये कोई अच्छी पसंदीदा बात नहीं, वरना आपसे जरूर कहते हैं उसके साथ कर लो तुम, उसका रिश्ता तुम्हारे पास आया हुआ। नहीं, मेरे ख्याल उसामा बिन जैद के साथ आपने फरमाया था कि कर लो, बाहर कैफ बाप भी अब बेटे में से मुझे कोई गलती लग रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके साथ कर लो, उसामा के साथ, लेकिन इसके साथ ना करो, ये सख्त आदमी है। तो अल्लाह ताला ने औरतों को इनके बारे में फरमाया कि ये तुम्हारे सुपुर्द की गई है अल्लाह की अमानत के तौर पर, तो अमानतों का तो हिसाब होना है, अगर वो कुछ गलत करेंगी, कोई अपनी इज्जत के ऊपर कोई धब्बा लगवाएंगी, कहीं कोई गलत काम कर रही हैं और आदमी नहीं उनको देख रहा, और आदमी ने उनको फ्री हैंड दिया हुआ, किसी भी मर्दों के साथ दोस्तियां लगाती फिरे, उसके ऊपर भी आदमी से पूछोगी, और अगर आदमी इनके साथ ऐसा कोई मामला करता है उस पर भी पूछोगी, ठीक है। तो अच्छा, नुशूज में एक और बात भी है, ये भी बताया गया कि नुशूज ये भी है कि फाहिशा मुबैना करें, वो फहाशी की बात ऐसी करें कि जो नाकाबिले बर्दाश्त हो आदमी के लिए, तब भी ये स्टेप्स हैं। इसके अलावा कोई और नहीं स्टेप बताया गया, इसके अलावा कोई और चीजें तुम कर सकते हो, जब भी कोई ऐसी बात होगी तो फिर इन स्टेप्स को इस तरह से फॉलो किया जाएगा, और वो भी जब उनकी बगावत हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तब उनके साथ ये मामलात किए जाएंगे। बाकी औरत के लिए भी बहुत बड़ी बातें बताई गई कि उनके लिए भी कितना नेक औरत तो वो है कि जब वो फरमा बरदार है और जब आदमी उसकी तरफ देखे तो उसको खुश करते हैं। नहीं, ऐसी है उसके अंदर, ऐसे गुण हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी उसके अंदर क्वालिटीज हैं कि आदमी उसका शौहर उसकी तरफ देखता है तो उसको खुश कर देती है। ये कि बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो ऐसा औरत को, चाहे वो अपने किसी सुगड़पने की वजह से कर रही है, चाहे वो अपनी अपने आप को बना संवार के इतना रखती है कि आदमी खुश हो जाता है उसकी तरफ देख के, चाहे कोई भी इस तरह की कोई बात हो सकती है, मगर जब आदमी उसकी तरफ देखे तो वो उसको खुश कर दे, ये भी एक नेक औरत, एक अच्छी औरत की क्वालिटी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक औरत को मता फरमाया कि दुनिया का बेहतरीन मता क्या है, एक नेक औरत। नेक औरत दुनिया की बेहतरीन, जो जितनी भी फायदे की चीजें हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा फायदे की चीज अगर किसी को कोई नेक बीवी मिल जाती है तो ये एक फायदे की बहुत बड़ी उसको अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत मिल गई है, ये भी कहा गया। तो अब यहां से हमें पता चल गया कि औरतों की क्या हकूक और फराइज हैं और मर्दों के क्या हकूक और फराइज हैं, ये भी हमें यहां से बखूबी अंदाजा हो गया। अच्छा, मैंने ये आपको जैसे बताया कि नुशूज का मतलब छोटी मोटी बात नहीं है, कि छोटी मोटी अगर कहीं मसलन किसी का किसी दिन तबीयत में कुताहट आई भी है, आगे पीछे वो ऐसी नहीं है, लेकिन आज उसको कोई ऐसा मसला हो गया है, ऐसी कोई ऊंच नीच हो गई है, तो तब भी ये उठ के जो थप्पड़ मारने लग जाना या ये करना, ये दुरुस्त नहीं है। इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गुलामों के भी बारे में फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि एक सहाबी ने पूछा कि मैं दिन में कितनी बार अपने नौकर को माफ करूं, कितनी दफा अपने गुलाम के दरगुजर करूं, तो आपने फरमाया 70 दफा। 70 दफा तो कोई गलती भी नहीं करता होगा, नौकर को भी फरमाया कि 70 दफा भी वो गलती करे तो उसको माफ कर दो। 70 एक नंबर बताया गया, मतलब है कि बहुत दफा। तो बीवी तो नौकर के बराबर नहीं है, वो तो अल्लाह के नाम पे उसको अमानत के तौर पे लिया गया, उसकी अल्लाह के नाम की वजह से हकूके ज़ौजियत आदमी को मिले। तो अब इस बात को समझना चाहिए, और अगर इसके ऊपर कोई प्रोपगेंडा करे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जवाब क्या है। इन अल्लाह कान अलियन कबीरा, अल्लाह ताला बुलंद है और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगर आदमी को ये सोचता है कि वो औरत के साथ ज्यादती करके और फिर वो कोई नहीं उसको पकड़ेगा, तो याद रखो कि तुम अगर उसके ऊपर जोर रखते हो ना, तो तुमसे एक बड़ा है जो तुम पे जोर रखता है, ठीक है? तो इसलिए बहाने ना तलाश करो फिर उसको मारने के, तंग करने के, और उसको उसके बारे में ऐसी बातें करने के। आप देख रहे हैं कि कितनी तफसील है इन अहकामात में। नमाज के बारे में, नमाज का हुक्म बहुत जगह है कुरान में, लेकिन इतनी डिटेल कहीं पे भी नहीं आई। रोजे की डिटेल नहीं है, हज की डिटेल नहीं है, लेकिन घर कैसे सही से चले, फैमिली मैटर्स, फैमिली यूनिट को बचाने के लिए कितनी डिटेल आई है। क्योंकि अगर यहाँ पे खराबियां आ जाए ना, तो घर खराब हो जाते हैं, घर खराब हो जाए, बच्चे खराब हो जाते हैं, फ्यूचर उस माशरे का खराब हो जाता है। जब घर टूटने लगेंगे तो माशरा ही खराब हो गया ना सारा। घर घरों के अंदर औरतों को मारा जा रहा है, कहीं आदमी ज्यादती कर रहे हैं, कहीं औरतें नशूज पे उतरी हुई हैं, कहीं औरतें हाफिजात नहीं है, कहीं औरतें कानितात नहीं है, कहीं मर्द ऐसे हैं कि वो बस बहाने ढूंढते हैं कि हमें किस तरह से हमें मारने का मौका मिले। तो जब घरों के अंदर इतनी बेचैनी होगी तो याद रखिए वो घर तक नहीं महदूद रहती। वो ही आदमी जो घर से सताया हुआ निकलेगा, वो जाके क्या जॉब करेगा, वो बिजनेस में कैसा होगा, वो किसी के साथ भी बात करेगा, किसी क्लाइंट के साथ भी, तो वो मुंह से उसके क्या फूल झड़ेंगे, नहीं, उसकी मेंटल हालत क्या होगी। इसी तरह जो औरत वो मार खाती है घर के अंदर, वो आदमी के जुल्मों सितम का शिकार हो रही है, उसको दिन रात एब्यूज किया जा रहा है, उसको ताने दिए जा रहे हैं, वो एक मेंटल केस बन चुकी है, वो क्या अपने बच्चों की तरबियत करेगी,
घर को क्या देखेगी, वो घर के क्या काम काज करेगी, उसकी मेंटल हालत ही सही नहीं है, तो वो क्या, वो एक हेल्दी पर्सन नहीं है, वो उसके मामला क्या होंगे दूसरों के साथ फिर। ये ना चेन रिएक्शन है, ये एक जगह पे खत्म नहीं हो जाता, वो फिर अपने हमसायों के साथ क्या करेगी, अपनी दोस्तों के ऊपर किस तरह बरसेगी, वो अपने ससुराल के साथ क्या मामला करेगी, वो अपने बहन भाइयों के साथ किस तरह से डील करेगी, वो तो हर एक के साथ तोप बन जाएगी, वो तो सबको एक ही निशाने पे लिए रखेगी, उसके भी मुंह से फूल नहीं चढ़ेंगे फिर। तो ये यहाँ पे नहीं खत्म होता, फिर बच्चों के पर अब्यूज शुरू हो जाती, वो औरत जो घर की सताई भी हो, जो वहां से मार कर रही हो तो बच्चों को आगे फिर मारती है। तो ये बहुत जरूरी है कि घर पुरसकून हो, घर पुरसकून होंगे माशरा पुरसकून होगा, एक रिपल इफेक्ट होता है, ऐसे वेव्स होती है ना आप समंदर में देखते हैं, एक वेव बड़ी आई तो उससे आगे और बड़ी, फिर और आगे से आगे बनती जाती है, इसी तरह एक पुरसकून पर्सन अपनी पॉजिटिव एनर्जी आगे देता है, उससे आगे पॉजिटिव एनर्जी, वो अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा होगा, वो अपने घर जाएंगे वो वहां अच्छे होंगे, फिर वो अपने दोस्त अहबाब से मिलेंगे वहां अच्छे होंगे, लेकिन यहां से अगर घर से कोई आदमी निकला है गुस्से में और वो घर के कई कामों से तंग है, तो बताएं वो आगे जिस जिस जगह पे जाएगा वहां पे जहर उगलेगा, और यही हाल औरत का होगा, तो ये फिर आगे चीजें फैलती हैं। ठीक है, ये जरूरी है कि हम अपने घरों को पुरसकून बनाएं, एट एनी कॉस्ट पुरसकून बनाएं, चाहे कोई बात दूसरे की माननी पड़ती है, कुछ अपनी मर्जी छोड़नी पड़ती है, कहीं दिल नहीं करता ठीक है, खुद को बदलना पड़ता है, अल्लाह के अहकामात के सामने नहीं, वैसे कोई चीज ऐसी है नहीं उसको पसंद आती तो ठीक है छोड़ दी, जाने दिया उसको, अगर उसे कोई कयामत नहीं आ रही तो, कहीं आदमी कॉम्प्रोमाइज कर ले के चलो ठीक है अब इतना ये कह रही है तो ठीक है इसकी बात मान लो, अगर नाजायज तो नहीं कह रही ना, कोई जायज ही मुतालबा है, अपने माँ बाप को मिलने जाना चाहती है या कुछ ऐसी बात है, कोई ऐसा तो नहीं, कोई गुनाह थोड़ी कर रही है, चलो वो थोड़ा अपना अपने आप को थोड़ा लचक दिखा ले, कोई नहीं, इन चीजों से घर बनता है, ये नहीं कि ये सिखाएं हम भी दूसरों को और हम खुद भी ये ठान के बैठ जाएं, मैंने अगर एक दफा मान ली ना इसने तो सर पे ही चढ़ जाना, फिर तक ना फिर एक और बात होगी, फिर एक और बात आएगी, मैं मान के नहीं देनी, मैंने सर पे नहीं चढ़ाना, ये अकड़े जो है ना ये छोड़ देनी चाहिए मेको में, आदमियों को भी छोड़नी चाहिए और औरतों को, आदमी मगर कम ही होता कि वो अपनी अकड़ छोड़ते हैं, उनके अंदर एक अना और वो चीज होती है, तो औरतें हैंडल करें हिकमत के साथ, काम भी कराना है लेकिन उसकी अना को भी नहीं ठेस पर पहुंचानी, ठीक है। नसीम, मैं सोच रही थी बहुत दिन से ही कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ खुशहाल घराना की टिप्स कुछ शेयर की जाए हर एक क्लास के बाद इंशाल्लाह ताला, तो अल्लाह हमारे घरों को पुरसकून बनाए, इन पे सकीनत तारी फरमाए, मर्दों को भी हिकमतें दें और उनके भी तहम्मुल अता फरमाए, और औरतों को भी समझ और हिकमत अता फरमाए।